एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम जिस ज्ञान स्रोत की गहराई में उतर रहे हैं वो है देवदत्त पटनायक की मशहूर किताब जय, महाभारत का सचित्र पुनर्पाठ। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि कह सकते हैं कि जीवन के जो जटिल सवाल है ना, उनको समझने का एक फ्रेमवर्क है।
बिल्कुल, और ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ मतलब हजारों साल पुरानी कथा नहीं दोहराती।
हाँ,
ये मानवीय स्वभाव, जो नैतिक दुविधाएं होती हैं और धर्म के असल मायने क्या हैं, इस पर सोचने को मजबूर करती है। खासतौर पर यह सवाल उठाती है कि भाई किसी व्यक्ति की भूमिका, उसका रोल क्या है और उसका लक्ष्य, उसका गोल क्या होना चाहिए,
खासकर तब जब सही गलत का रास्ता बिल्कुल साफ ना हो, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल। पटनायक दिखाते हैं कि महाभारत में कोई भी मतलब पूरी तरह हीरो या विलन नहीं है।
सही,
हर कोई अपनी भूमिका और अपने लक्ष्यों के हिसाब से जी रहा है और इसी में वो टकराव होता है।
तो चलिए इसी जटिल लेकिन दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं, देखते हैं पटनायक हमें क्या सिखाते हैं।
हाँ, पर इस सफर पर निकलने से पहले मुझे लगता है लेखक देवदत्त पटनायक को जानना जरूरी है।
हाँ जरूर।
वे भारत के जाने माने मिथक विद हैं, मतलब मिथोलॉजिस्ट।
और उनकी खासियत है कि वो प्राचीन भारतीय ज्ञान को आज के जमाने के लिए बहुत आसान और प्रासंगिक बना देते हैं।
और पता है उनकी पृष्ठभूमि भी काफी अनोखी है। वो एक प्रशिक्षित डॉक्टर हैं।
जी हाँ,
दवा कंपनी में 15 साल काम किया है उन्होंने। तो ये जो विज्ञान और मिथक का मेल है ना, उनके नजरिए को एक अलग ही धार देता है।
सही कहा। वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उनके पीछे का जो तर्क है, जो स्ट्रक्चर है, उसे भी समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, उनकी विशेषज्ञता संस्कृत ग्रंथों की गहरी समझ में तो है ही, साथ ही वो उसे आधुनिक मैनेजमेंट, साइकोलॉजी और सामाजिक मुद्दों से जोड़ पाते हैं।
वाह।
उन्होंने 50 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनकी शैली बहुत सीधी, सरल और पता है चित्रों से भरपूर होती है।
हाँ, मैंने देखा है उनके चित्र काफी एक्सप्रेसिव होते हैं।
बिल्कुल, जो जटिल विचारों को भी समझने में मदद करते हैं।
तो जय लिखने के लिए वो एकदम सही व्यक्ति लगते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो महाभारत की इतनी विशाल कहानी को संभाल सकते हैं, अलग अलग जो क्षेत्रीय लोक कथाएं हैं उनको एक साथ ला सकते हैं।
हाँ,
और सबसे बढ़कर वो इसे सिर्फ एक युद्ध की कहानी से ऊपर उठाकर धर्म, कर्म और जैसा हमने कहा भूमिका और लक्ष्य के सवालों से जोड़ते हैं।
और उनके खुद के बनाए चित्र किरदारों और घटनाओं को जैसे जीवंत कर देते हैं।
तो ये किताब आखिर है किस बारे में? जैसा हमने कहा, ये सिर्फ महाभारत का रीटेलिंग नहीं है।
नहीं,
पटनायक का मुख्य उद्देश्य है इसे आज के पाठक के लिए धर्म की खोज बनाना।
और यहाँ धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ या क्या कहते हैं, नियमों की लिस्ट नहीं है।
हाँ, ये समझना जरूरी है।
बिल्कुल,
बल्कि ये समझना है कि किसी खास स्थिति में, किसी खास भूमिका यानी रोल में, किसी व्यक्ति का सही आचरण या कर्तव्य क्या है, उसका धर्म क्या है।
और पटनायक जानबूझकर उस सीधी साधी कहानी से बचते हैं जहां हम कहते हैं ना, पांडव अच्छे और कौरव बुरे।
हाँ, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला नजरिया नहीं है।
बिल्कुल,
वो दिखाते हैं कि हर किरदार अपनी समझ, अपनी निष्ठा, अपनी भूमिका और अपने लक्ष्य के हिसाब से काम कर रहा था। कोई भी किरदार पूरी तरह सही या गलत नहीं है शायद।
हाँ कह सकते हैं।
किताब का नाम जय यानी विजय है, लेकिन ये लगातार सवाल पूछती है, क्या ये वाकई विजय थी? किसकी विजय थी भाई,
और किस कीमत पर?
ये बहुत बड़ा सवाल है। वो कहानी के बीच में रुककर छोटे छोटे बक्सों में या चित्रों के साथ धर्म, कर्म, नियति, मानवीय इच्छाओं और इन भूमिकाओं के टकराव पर टिप्पणी करते हैं।
अच्छा, मतलब कहानी रोककर विश्लेषण देते हैं।
हाँ, एक तरह से वो पूछते हैं इस किरदार ने ऐसा क्यों किया होगा, उसकी भूमिका क्या थी उस वक्त, उसका लक्ष्य क्या था, क्या वो अपनी भूमिका सही से निभा पाया, ये सब सवाल वो उठाते हैं।
तो सतह पर तो ये राजाओं, रानियों, युद्धों और चमत्कारों की एक रोमांचक कहानी लगती है।
हाँ वो तो है ही,
लेकिन गहराई में हमें दुनिया और इंसानी रिश्तों को समझने का एक ढांचा देती है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग लोगों की भूमिकाएं और उनके लक्ष्य आपस में टकराते हैं और उसके क्या नतीजे होते हैं।
पटनायक ने किताब को मूल महाभारत की तरह 18 खंडों में बांटा है। अब हर अध्याय में तो हम नहीं जा सकते, जाहिर है।
हाँ, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा।
बिल्कुल, लेकिन कुछ मुख्य मोड़ों पर ध्यान देंगे जहां पटनायक का विश्लेषण खास तौर पर दिलचस्प है। खासकर ये भूमिका और लक्ष्य वाले नजरिए से।
ठीक है, कहाँ से शुरू करें?
शुरुआत होती है भीष्म की प्रतिज्ञा से। उनका लक्ष्य क्या था? हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करना। उनकी भूमिका थी एक संरक्षक की।
हाँ, वो तो उन्होंने निभाई भी आखिर तक।
निभाई, लेकिन विडंबना देखिए, यही प्रतिज्ञा आगे चलकर वंश के विनाश का एक बड़ा कारण बन जाती है। ये दिखाता है कि कैसे कभी कभी नेक इरादे और अपनी भूमिका पर सख्ती से टिके रहना भी अनएक्सपेक्टेड, मतलब अनइंटेंडेड, बुरे नतीजे दे सकता है।
ये तो है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म, नियोग जैसी प्रथाओं का जिक्र आता है।
हाँ, उस समय की एक व्यवस्था थी वो।
हाँ, और कौरवों और पांडवों के बीच बचपन से ही वो जो ईर्ष्या और मुकाबला था वो साफ दिखता है।
अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना और द्रुपद से बदला लेना वो ज्यादा हावी लगता है।
हाँ, ये बात तो है। और फिर आता है वो विनाशकारी द्यूत क्रीड़ा, चौसर का खेल।
उफ, वो तो कहानी का टर्निंग पॉइंट एक तरह से।
बिल्कुल, यहाँ युधिष्ठिर का धर्म संकट साफ दिखता है ना। उनकी राजा की भूमिका उन्हें निमंत्रण स्वीकारने पर मजबूर करती है, क्षत्रिय धर्म हार न मानने को कहता है।
हाँ, और उनका लक्ष्य शायद अनजाने में अपनी प्रतिष्ठा बचाना बन जाता है।
और वो सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, राज्य, भाई, खुद को और
अंत में द्रौपदी को भी।
हाँ, उनकी जो धर्मराज की भूमिका थी वो यहाँ बुरी तरह असफल होती दिखती है।
हाँ, और भरी सभा में द्रौपदी का वो सवाल, पहले किसे हारा, खुद को या मुझे, और फिर इस सभा का धर्म क्या है, ये सिर्फ अपमान का चीत्कार नहीं था, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल था, और कोई जवाब नहीं मिलता, जो दिखाता है कि धर्म कितना जटिल है, कितना सिचुएशन डिपेंडेंट है।
सही, इस घटना के बाद द्रौपदी की भूमिका प्रतिकार मांगने वाली बन जाती है, और शायद यहीं से युद्ध का बीज बोया जाता है। उनका लक्ष्य अब न्याय पाना या बदला लेना है।
इसके बाद आता है पांडवों का 13 साल का वनवास। ये सिर्फ सजा नहीं थी।
नहीं, ये एक तरह से उनके लिए सीखने का समय था, है ना?
हाँ, बिल्कुल, उनकी भूमिकाओं और लक्ष्यों को दोबारा समझने और गढ़ने का समय। जंगल में वो ऋषियों से ज्ञान लेते हैं, अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या करते हैं, भीम हनुमान से मिलकर अपनी शक्ति पहचानते हैं। ये सब उनके भविष्य की युद्ध के लक्ष्य के लिए तैयारी का दौर था।
और वो यक्ष प्रश्न वाला प्रसंग, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है।
बहुत ज्यादा। जब यक्ष के गूढ़ सवालों का जवाब देकर युधिष्ठिर अपने भाइयों को बचाते हैं, तो ये उनकी धर्म की समझ को दिखाता है कि धर्म सिर्फ नियम नहीं, विवेक और करुणा भी है।
हाँ, कह सकते हैं कि ये उनकी भावी राजा की भूमिका के लिए एक परीक्षा थी।
बिल्कुल, जहाँ उन्होंने सही लक्ष्य यानी भाइयों का जीवन, उसे निजी अहंकार से ऊपर रखा।
फिर 13वां साल आता है अज्ञातवास का। उन्हें अपनी राजसी पहचान छिपानी पड़ती है, सेवक की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं।
हाँ, युधिष्ठिर कंक नाम के दरबारी बन जाते हैं, भीम वल्लभ नाम के रसोइये, अर्जुन बृहन्नाला।
हाँ, नृत्य शिक्षक। ये तो उनकी विनम्रता और धैर्य की बहुत कठिन परीक्षा रही होगी।
जाहिर है, अपने असली लक्ष्य यानी राज्य वापसी को पाने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से बिल्कुल अलग भूमिकाएं अपनानी पड़ती हैं।
वनवास के बाद आता है युद्ध की तैयारी का दौर, उद्योग पर्व।
हाँ, यहाँ शांति वार्ता की कोशिशें होती हैं। पांडव सिर्फ 5 गांव मांगते हैं, मतलब युद्ध टालने के लिए अपने लक्ष्य को कितना छोटा कर लेते हैं वो।
लेकिन दुर्योधन, जिसकी भूमिका एक युवराज की है, पर जिसका लक्ष्य है पांडवों को कुछ न देना और पूरा नियंत्रण पाना।
हाँ, वो तो सुई की नोक बराबर जमीन देने से भी मना कर देता है। यहाँ उसका हठ, उसकी असुरक्षा, वो सब साफ दिखता है।
अवकृष्ण की भूमिका यहाँ बहुत खास हो जाती है।
बहुत। वो एक दूत बनकर अंतिम प्रयास करते हैं, और जब दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की सोचता है, तो कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं,
वो विश्व रूप दर्शन।
हाँ, पटनायक के अनुसार ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये शायद ये दिखाना था कि ये युद्ध अब सिर्फ इंसानों के बस की बात नहीं रही, ये एक बड़ी, क्या कहते हैं, कॉस्मिक प्लान का हिस्सा है।
अच्छा, मतलब इंसानी भूमिकाएं और लक्ष्य उस बड़ी तस्वीर के सामने छोटे पड़ जाते हैं।
हाँ, एक तरह से यही लगता है।
और फिर शुरू होता है कुरुक्षेत्र का महायुद्ध।
हाँ, और पटनायक 18 दिनों के युद्ध के वर्णन में सिर्फ वीरता पर फोकस नहीं करते।
नहीं, वो उन नैतिक समझौतों पर ज्यादा जोर देते हैं ना, जो पांडवों ने जीत के लक्ष्य को पाने के लिए किए।
बिल्कुल, युद्ध शुरू होता है अर्जुन के मोह से अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने का वो धर्म संकट।
यहीं कृष्ण का गीता उपदेश आता है, जिसका सार शायद यही है, अपनी भूमिका निभाओ, अपना कर्म करो, फल की चिंता मत कर। लेकिन युद्ध के दौरान ये भूमिका निभाना अक्सर नियमों को तोड़ने का रूप ले लेता है।
हाँ, दोनों तरफ से।
भीष्म का पतन, शिखंडी को ढाल बनाकर होता है, द्रोण का वध युधिष्ठिर के उस अर्ध सत्य से संभव होता है, अश्वत्थामा मारा गया हाथी,
कर्ण का वध भी तब होता है जब वो निहत्था होता है,
दुर्योधन की जांग पर प्रहार भी नियम विरुद्ध था।
तो पटनायक दिखाते हैं कि कैसे धर्मयुद्ध का लक्ष्य पाने के लिए दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तरह से धर्म की सीमाओं को लांघा, और कृष्ण इन सब में मार्गदर्शक की भूमिका में है, जो और भी जटिल सवाल खड़े करता है।
सही,
युद्ध का अंत तो और भी भयानक है। अश्वत्थामा रात में सोती पांडव सेना का संहार करता है, द्रौपदी के बेटे भी मारे जाते हैं।
हाँ, वो सौप्तिक पर्व, वो बदले की भावना किसी भी जीत की खुशी छीन लेती है, फिर गांधारी का विलाप और कृष्ण को श्राप, ये सब युद्ध की निरर्थकता को ही दिखाता है।
मतलब लक्ष्य जीत तो हासिल हुआ, पर कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी। युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, लेकिन उनमें वो अपराध बोध है, शोक है।
हाँ, वो खुशी नहीं है जीत की।
बिल्कुल, बाणों पर लेटे भीष्म उन्हें राजधर्म का उपदेश देते हैं शांति पर्व, अनुशासन पर्व में, लेकिन क्या ये उपदेश उनके मन की पीड़ा कम कर पाता है, कहना मुश्किल है।
हाँ, यहाँ राजा की भूमिका एक बोझ ज्यादा लगती है, उपलब्धि कम।
सही कहा, फिर 36 साल राज करते हैं, लेकिन हानि की छाया में। उसके बाद यादवों का आपसी संहार में अंत होता है, कृष्ण की भी मृत्यु हो जाती है, ये कर्म का चक्र दिखाता है।
और अंत में पांडवों का महाप्रस्थान।
हाँ, रास्ते में सब गिरते जाते हैं सिवाय युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहे कुत्ते, जो धर्मराज का रूप थे।
और स्वर्ग में कौरवों को देखकर युधिष्ठिर चौंकते हैं।
हाँ, अंततः सब स्वर्ग में मिलते हैं। पटनायक के अनुसार ये दिखाता है कि सांसारिक भूमिकाएं और लक्ष्य अंतिम नहीं है, सब एक बड़ी लीला का हिस्सा थे। कहानी एक अंतहीन चक्र पर जोर देकर खत्म होती है।
तो इस पूरी कहानी और पटनायक के विश्लेषण से मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? पहला तो शायद यही है कि धर्म बहुत जटिल है, तरल है।
बिल्कुल, कोई एक फिक्स्ड रूल बुक नहीं है जो हर स्थिति में लागू हो। आपकी भूमिका, आपका संदर्भ, आपका लक्ष्य, ये सब मिलकर तय करते हैं कि उस वक्त धर्म क्या है।
हाँ, जैसे युधिष्ठिर का राजा धर्म उन्हें जुआ खेलने भेजता है, अर्जुन का योद्धा धर्म उन्हें परिवार से लड़ने को कहता है, ये आसान नहीं है।
बिल्कुल नहीं। दूसरा बड़ा सबक है सत्य और दृष्टिकोण की सापेक्षता, मतलब ट्रूथ इज रिलेटिव।
हाँ, पटनायक किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहराते, वो दुर्योधन का पक्ष भी रखते हैं कि शायद उसे लगता था उसी का हक है, उसके साथ अन्याय हुआ है।
सही, कहानी किसके नजरिए से देख रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि जय किसकी हुई। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी बात को ही परम सत्य मानता है, ये बहुत जरूरी सीख है
कि दूसरों की भूमिका और नजरिए को भी समझें।
हाँ, तीसरा, प्रतिशोध और युद्ध की निरर्थकता। पांडवों ने युद्ध जीता, अपना लक्ष्य हासिल किया, पर मिला क्या?
खाली सिंहासन, विधवाओं का राज्य और जीवन भर का पछतावा।
बिल्कुल, गांधारी का विलाप साफ दिखाता है कि युद्ध में असल में कोई नहीं जीतता। बदला लेने का लक्ष्य अंत में और ज्यादा हिंसा और दुखी लाता है।
चौथा, नायक और खलनायक के खांचों का टूटना। पटनायक दिखाते हैं कि पांडव भी दूध के धुले नहीं थे।
नहीं थे, उनमें अहंकार था, उन्होंने बदला लिया, जीतने के लिए नियम तोड़े, उनकी भूमिकाएं हमेशा आदर्श नहीं रही।
और वहीं कौरवों की तरफ भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान लोग थे जो अपनी निष्ठा या परिस्थितियों के कारण गलत पक्ष में खड़े थे।
हाँ, असल इंसान अच्छाई बुराई के इसी मिले जुले, मतलब ग्रे रंग में होते हैं।
सही कहा। और पांचवा,
इंसानी कोशिशें और भाग्य का खेल। किरदार अपनी नियति, श्राप, वरदानों से बंधे हैं, लेकिन उनके चुनाव भी मायने रखते हैं। क्या युद्ध होना तय था या किरदारों के गलत फैसलों ने उसे अनिवार्य बना दिया?
ये तो बड़ा सवाल है। शायद दोनों।
हाँ, शायद दोनों। हर कोई अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजा हमेशा उनके हाथ में नहीं होता। कृष्ण जैसे किरदार भी सब कुछ जानते हुए शायद सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, बस मार्गदर्शन करते हैं। ये भाग्य और कर्म के बीच का वो तनाव दिखाता है।
पटनायक की किताब में ऐसे कई विचार हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक मुख्य विचार ये है कि महाभारत अच्छे बनाम बुरे की कहानी नहीं, बल्कि धर्म बनाम अधर्म की कहानी है, जहां दोनों के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है।
हाँ, ये हमें सिखाता है कि दुनिया को सिर्फ काले और सफेद में देखना बंद करें।
और कृष्ण के बारे में ये विचार भी बहुत गहरा है। कृष्ण समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे समस्याओं के साथ हमारे रिश्ते को बदल देते हैं।
वाह, मतलब असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे अंदर आता है। हमारी भूमिका मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपना नजरिया बदलना है।
जीत की परिभाषा पर भी पटनायक सवाल उठाते हैं। विजय दूसरे को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को इतना बड़ा करने में है कि दूसरा उसमें समा जाए।
ये तो बहुत ऊंची बात है, प्रतिस्पर्धा से ज्यादा समझ और करुणा पर जोर। लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं बल्कि समावेशी होना चाहिए।
और ये भी कि महाभारत में हर कोई अपने नजरिए से सही है और हर कोई गलत भी।
हाँ, यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना और कट्टरता से बचना सिखाता है। दूसरों की भूमिकाओं और लक्ष्यों का सम्मान करना भले हम उनसे सहमत न हो।
आखिर में ये विचार के असली युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं लड़ा जाता बल्कि हर इंसान के दिल में लड़ा जाता है जहाँ इच्छाएं कर्तव्यों या भूमिकाओं से टकराती हैं।
बिल्कुल, ये बाहरी संघर्ष को हमारे अंदर के संघर्ष का आईना बना देता है। तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
हाँ, ये जानना जरूरी है।
सबसे पहले तो निजी फैसले लेने में मदद मिलती है। ये किताब सिखाती है कि नियमों को आंख मूंद कर मानने की बजाय स्थिति, इरादे और नतीजों को देखकर फैसले कैसे लें।
खासकर काम की जगह पर, है ना, जहाँ हमें अक्सर कर्मचारी, टीम लीडर, दोस्त जैसी अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और लक्ष्य भी बदलते रहते हैं।
बिल्कुल,
लीडरशिप और मैनेजमेंट के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। कृष्ण का तरीका सीधे नियंत्रण के बिना गाइड करना, नतीजे की चिंता किए बिना काम पर ध्यान देना।
और युधिष्ठिर का संघर्ष दिखाता है कि एक लीडर को सिर्फ आदर्शवादी नहीं व्यवहारिक भी होना पड़ता है। उसे अपनी भूमिका समझनी होगी और लक्ष्य पाने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे।
और भीष्म की चुप्पी वो ये याद दिलाती है कि ताकतवर लोगों का चुप रहना भी एक तरह का चुनाव है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
हाँ, ये बात भी है। झगड़ों और विवादों को सुलझाने के लिए भी ये एक अच्छी केस स्टडी है। दुर्योधन का वो 5 गांव न देना दिखाता है कि कैसे छोटी सी जिद बड़े विनाश का कारण बन सकती है।
तो किसी भी बहस या झगड़े में दूसरे पक्ष के नजरिए, उसकी भूमिका और उसके लक्ष्यों को समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है।
हाँ, पारिवारिक रिश्तों में भी इसकी झलक दिखती है। ईर्ष्या, पक्षपात, बातचीत की कमी, धृतराष्ट्र का अपने बेटों के प्रति मोह एक चेतावनी है
कि कैसे निजी लगाव हमारी निष्पक्ष भूमिका निभाने में रुकावट बन सकता है। ये हमें परिवार में भी एक दूसरे के नजरिए और भूमिकाओं को समझने की सीख देता है।
और आज के इस अनिश्चित समय में ये किताब हमें नैतिक दुविधाओं के साथ जीना सिखाती है। ये याद दिलाती है कि दुनिया हमेशा साफ साफ सही गलत में बटी नहीं होती।
हाँ, हमें अपनी भूमिकाओं और लक्ष्यों पर लगातार सवाल उठाते रहना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? मेरे लिए तो ये कि समझदारी आसान जवाबों में नहीं बल्कि जटिलताओं को स्वीकार करने में है। जिंदगी अक्सर अस्पष्ट होती है।
हाँ।
और मैच्योरिटी इसी बात में है कि हम समझें कि हर भूमिका की अपनी सीमाएं हैं और हर लक्ष्य की अपनी कीमत।
बिल्कुल, और शायद ये भी कि असली जय या जीत बाहरी सफलता में उतनी नहीं है जितनी आत्म जागरूकता में। अनुभवों से सीखना, भले ही वो दुखद हों।
हर इंसान की जटिलता, उसकी भूमिका, उसकी मजबूरियां, उसके लक्ष्यों को देखना होगा।
हाँ।
धर्म कोई बनी बनाई लिस्ट नहीं बल्कि एक लगातार चलने वाला अंदरूनी संवाद है, एक सतत खोज है।
ये किताब वाकई प्राचीन भारतीय दर्शन की गहराई दिखाती है और ये भी कि वो आज भी कितना प्रासंगिक है।
बिल्कुल, और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी लड़ाई शायद हमारे अंदर ही है, अपनी इच्छाओं और अपनी भूमिकाओं के बीच, अपने लक्ष्यों और उनके परिणामों के बीच।
हाँ, और ये किताब उस लड़ाई को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक तरफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।